चलिए अब आयत पे चलते हैं। पहली आयत से शुरू करेंगे। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हरुफ मुकत्तात है। तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम, इस किताब का उतारा जाना उस हस्ती की तरफ से है जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने का जिक्र कुरान के उतारे जाने के साथ क्यों है? इसका जवाब सूरत अर्रहमान की पहली आयतों में और रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान का रहम है कि उसने इस किताब को नाजिल किया। और हकीकत है कि कुरान पढ़ने वाला इस बात की गवाही दिए बगैर रह नहीं सकता कि कुरान अल्लाह का रहम है इस इंसानियत पर। इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब इंसानियत की खैर के लिए हैं। कैसी है ये किताब? यानी आप कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत एक ठाठे मारता हुआ समंदर है और ये कुरान भी एक समंदर है। अल्लाह की रहमत में दवाम भी और तसलसल भी है, इस किताब के अंदर भी यही है। ऐसे लगता है कि जैसे एक सीरीज चल रही है और कोई चीज बीच में से छूट जाए तो इंसान अपने आप को कोसने लगता है। फरमाया ये किताब कैसी है? किताब उन फुस्सिलत आयातुहु, ये कैसी किताब है जिसकी आयतें खूब खोल खोल कर बयान कर दी गई। ये है लफ्ज फुस्सिलत जिस पे इस सूरत का नाम है। हर चीज हर मजमून को तफसील के साथ खोल खोल कर अलहदा अलहदा करके बयान कर दिया गया। कुरआनन अरबिय्यन लिकौमी यालमून, कुरान अरबी की सूरत में इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं या इल्म रखना चाहते हैं। क्या पता चला कि ये कुरान खोल खोल कर बयान किया गया है, शर्त एक है कि लोग इल्म हासिल करना चाहें। मजमून क्या है इस किताब का? बशीरम व नजीरा, बशारत देने वाली और आगाह कर देने वाली। देखिए यही लकब नबी सल्लम का भी है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, और यही खूबी किताब की भी है। ये किताब बशारतें भी देती है और खबरदार भी करती है। और अल्लाह के नबी भी अगर तबशीर और इंतजार करते थे तो कुरान के जरिए से तो करते थे। सूरत मरियम आयत 97 में हम पढ़ चुके हैं, फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, बस हमने तो आसान कर दिया इस कुरान को आपकी जुबान में। क्यों? लितुबश्शिर बिहिल मुत्तकीना, ताकि आप बिशारत दें इसके जरिए से मुत्तकियों को। वतुनज़िर बिही कौमल लुद्दा, और खबरदार कर दें इसके साथ झगड़ालू कौम को। तो क्या पता चला कि बेहतरीन तालीम किताब के साथ है। कभी भी जिंदगी में अल्लाह आपको मौका दे कुछ सीखने सिखाने का बताने का, कुरान बेस्ट टूल है। अपनी बातें करने की बजाय सिर्फ एक आयत टूटे फूटे लफ्जों में भी लोगों को बता देंगे ना, तो यकीन करें उसका असर दूसरी बातों से ज्यादा होगा। और ये वो चीज है जो समझ आ जाए उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं लगता। फिर एक बात याद रखिए, अभी तक की आयतों में शुरू में क्या कहा कि ये कलाम अल्लाह की तरफ से नाजिल है। ये जो तुम हर वक्त कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख लिया, तो ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि ये कुरान सुनकर अगर तुम्हें गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आता है तो असल में तुम्हें अल्लाह पे आता है। अगर तुम इस नबी को रद्द करते हो कि ये एक इंसान है, तो तुम अल्लाह की बात को रद्द करते हो। और दूसरी बात ये बता दी गई कि इस कलाम को नाजिल करने वाला रब अपनी मखलूक पर मेहरबान है, रहमान और रहीम है, इसलिए कि उसने अपनी रहीमी के साथ तुम पर नाजिल किया। अगर तुम इससे पीछे हटते हो तो तुम्हारे अपने नसीब की बात है। और हकीकत यह है कि जिसको इस बात का पता चल जाता है वो कभी इस किताब की फिर मुखालफत नहीं करता और ना शुक्रपन नहीं दिखाता। एक तीसरी बात भी बता दी कि किताब कौन सी है? फुस्सिलत, खोल खोल कर बयान की गई। कोई उलझने नहीं है इसमें, पेचीदगी नहीं है, फलसफे नहीं है इसमें, कोई इधर उधर की बातें नहीं डाली हुई। अनपढ़ से अनपढ़ शख्स भी और पढ़े लिखे से पढ़े लिखा शख्स भी इसको वैसे ही समझता है। हक क्या है, बातिल क्या है, सही गलत क्या, किसी को कोई इस पर शक नहीं करने की जरूरत होती। इससे पता चलता है कि कुरान सीधा सीधा कलाम है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं होती इसको पढ़ते और पढ़ाते हुए। चौथी बात बताई, कुरान अरबियन, अरबी का कुरान है। यानी कुरान अगर गैर जुबान में आता तो अरबों ने ये उजर पेश करना था जो आज हम लोग करते हैं, यहाँ जी अरबी में हमें समझ नहीं आता, हम कैसे माने। तो इसी में हुज्जत है हम सब के लिए भी कि आज हम अरब तो नहीं लेकिन अरबी को उर्दू में तो सीख सकते हैं। तो कुरान का जो तर्जमा किया जाता है उसमें ये बात समझाई जाती है। पांचवी बात क्या है इसमें कि ये किताब उनको फायदा देती है जो लोग यालमून, जो इल्म रखते हैं, दाना, समझदार है। नादान लोगों के लिए इस किताब से फायदा नहीं होगा। जैसे कि कीमती हीरा उसी को फायदा देता है जो हीरे और पत्थर का फर्क जानता हो। और छठी बात हमने अभी तक पढ़ी कि ये किताब बशारत देने वाली और डराने वाली है। ऐसा नहीं कि एक तसव्वुर हो, एक फलसफा और इसी तरह की बातें और बस हांके पुकारे तमाम लोगों को कह दे, बल्कि बहुत भयानक अंजाम भी है और बहुत खूबसूरत हालात भी हैं। इसलिए जरूरत है इस बात की कि जब इस किताब को तुम अपने सामने रखो तो फिर तुम इसको खोलो और पढ़ो और फिर इसके अंदर से मोती चुनो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम इसको अपने दिल की तख्तियों पे लिखें। लेकिन बदबख्त, ना समझ, ना मुराद वो लोग होते हैं जो इससे फायदा नहीं उठाते। तो लिहाजा फारद अक्सरुहुम फहुम ला यस्माउन, तो इनकी अक्सरियत ने तो एराज किया और वो सुनते ही नहीं है। नोट कीजिएगा, फहुम ला यस्माउन, कितना सच्चा जवाब दिया अल्लाह ने, सुनते ही नहीं है। और आप देखिए, ये गिला आपको बहुत जगह मिलेगा। सूरत अनफाल की भी चंद आयतों में आते हैं ना, सुनो तो सही, अल्लाह के बंदो सुनोगे तो पता चलेगा कि आओ गलतियां निकालने के लिए सुनो, आओ तनकीद के लिए सुनो, आओ फितने उठाने के लिए सुनो, सुनो तो सही। कुछ लोग बगैर सोचे समझे कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के खिलाफ हो जाते हैं, किसी नाम के खिलाफ हो जाते हैं। आज तक कुछ नहीं सुना होता, खौफ इतना आता है कि पता नहीं सुना तो मेरा अकीदा ही ना बदल जाए। तो अल्लाह कहते हैं वो सुनने से इनकार करते हैं, फिर क्या कहते हैं उसके बाद, वकालु कुलूबुना फी अकिन्ना, वो कहते हैं हमारे दिल पर्दों में है। अकिन्ना किन से, कान, ये जो हमारा कान है वो भी इसी से है। और ये जो कानें होती है ना, माइंस पहाड़ों के नीचे, जिसमें सोना चांदी और तेल और पत्थर जो कुछ है वो भी यही है। छुपी हुई चीज जो कैविटी होती है, जो हमारे कानों के अंदर एक खोल सा होता है ना, वही चीज है। कहते थे हमारे दिल जो है वो तो पर्दों में, मिम्मा तदूना इलई, उस चीज से जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं। यानी हमारे दिल बड़े केयरफुल है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया था कुलूबुना गुल्फ, यहां तो इन्होंने कहा ना कुलूबुना फी यकीन्ना, वहां बनी इसराइल का जिक्र था तो कहा दिल ही पर्दे हैं, और यहां मुशरिकीने मक्का कहते हैं हमारे दिल बड़े पर्दों में सिक्योर हैं, मतलब यह कि तुम्हारी बातों का हमें कोई असर नहीं होता। ऐसे ही लोगों ने सर पे चढ़ाया है, हमें तो कोई खास बात कोई नहीं लगती, ये मतलब। और वफी आजानी ना वक्रुन, और हमारे कानों में बोझ है। जरा पीछे देखिए, ला यस्मौन में कानों का जिक्र हो गया ना, फिर कुलूबुना फी अकिन्ना में दिल का जिक्र है, दोबारा फी आजानी ना वक्रुन, हमारे कानों में बोझ है, दोबारा कानों का जिक्र है। यानी हमें तो बोझ लगता है, हमसे नहीं सुना जाता। कैसे आप सुनते इतने घंटे, हम तो थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं। फिल्म हम 3 घंटे देखते हैं, लेकिन कुरान हम बस 45 मिनट के बाद बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं। याद रखिए, मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी से ऐसी बातें अदब और एहतराम के दायरे में नहीं, बल्कि आपको तंग करने के लिए गुस्ताखी और मजाक में करते थे। मुख्तलिफ तरीकों से आपको समझाते, आके आपके सामने बातें करते, जो मर्जी कर ले हमने तो नहीं मानना, खुद को कर ले हिलकान। आपकी बातें हमारे दिल में तो कोई असर नहीं करती और हम तो कोई नहीं सुनते, हमारे दिलों में पर्दे ही नहीं, ये मजाकिया जुमले इनके। और चौथी बात कह रहे हैं, व मिन बैनिना व बैनिका हिजाब, और हमारे और आपके दरमियान तो एक पर्दा है, बैरियर है। हमारा लेवल आपसे नहीं मिलता, हमारी वेवलेंथ आपसे नहीं मिलती, आपका स्टैंडर्ड और है, हमारा और है। आप मदरसे मस्जिदों के मौलवी और मुल्ला बेचारे, हम बहुत बड़े अफसर, हम कनेट कॉलेज के पढ़े हुए, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, हम सूटेड बूटेड, आप क्या एक शलवार टखनों से ऊपर पहनते हैं। नो नो नो, वबई ना ना वबई ना खिजाब, बहुत पर्दे हैं भाई। आपका हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं मिलता। आपको क्या पता हमारी मजबूरियां, आपको क्या पता शराब हमारी कितनी मजबूरी है, हमारी मीटिंग्स नहीं चलती, शेक हैंड के बगैर कहाँ सौदे पास होते हैं, दिस एंड दैट। यानी आप कुछ और, आज हम कुछ और। आज भी याद रखिए, जो लोग दुनियावी हिसाब से पढ़ लिख जाते हैं या खाते पीते होते हैं ना, ये ओहदों पे होते हैं, उनको दीन वाले बड़े बैकवर्ड लगते हैं। आप लिख लीजिए इसके नीचे एक छोटा सा जुमला, मिम बेनी ना व बेनी का हिजाब, क्या आप बड़े बैकवर्ड हैं और हम तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और मॉडर्न लोग हैं। फामलिन ना मिलून, आप अपना काम करें हम अपना काम करते हैं। क्या आपने कभी आज के दौर में ये जुमले किसी से सुने? यकीन करें लोग ऐसे ही जुमले बोलते हैं दीनदारों को डिग्रेड करने के लिए। छोड़े, अपने काम से काम रखें, आप हमें ना सताएं, हम आपको कुछ कहते हैं जो आप हमें बार बार आके सताते हैं? और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत बड़ा समझना चाहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जो करना है कर लें, हम आपकी बात पे कान नहीं रखेंगे। अब आप देखिए, इन्होंने चार पांच बातें की है ना, जवाब सुनिए अल्लाह के नबी का, और यहां से आप भी अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लाना सीखें कि क्या करना है ऐसे तानों को सुनकर, आगे से गुस्से में और बाजू ऊपर चढ़ाकर और आंखें उबलती हुई और जुबान से पता नहीं क्या बोलना, नहीं, सिंपल सी बात है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप इनको बता दें मैं तो बस एक इंसान हूं आपकी तरह का, दैट्स इट। उनका चैलेंज देखिए, उनकी गुस्ताखियां देखिए और अल्लाह के नबी का जवाब देखिए। ये सुन्नत आज अपनाइए। आज हम गुर्राते हैं जब गैर मुस्लिमों को छोड़े अपने मुसलमानों से दीन के बारे में बात करते हैं। सीधी सी बात है, हाँ भाई मैं बशर हूं, मैंने कोई खुदाई का दावा तो किया नहीं, ना मैंने कहा मैं फरिश्ता हूं, एक इंसान हूं, हाँ बस फर्क है एक छोटा सा, क्या वाहिद, मेरी तरह वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, दैट्स इट। मेरे और तुम्हारे बीच में फर्क वही का है, और वही का खुलासा क्या है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आप देखिए कि सूरत का चूंकि मरकजी मजमून तौहीद है ना, तो सूरत के आगाज में इसको नुमाया किया जा रहा है कि बस एक रब को मान लो, मैं तो इसी की बात करता हूं, और रह गई बात कि तुम जिन कामों में लगे हुए वो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर अपनी बात बदलता नहीं, करो क्या, फस्तकीमु इलैही, तो इसी की तरफ सीधा रुखो अपने रुख को, वस्तगफिरूह, और इससे इस्तगफार करो, जो खताएं हुई गलतियां हुई पिछली जिंदगी में उसको माफ करो, कुफर और शिर्क के अकीदे से तौबा करो, और फस्तकीमु इलैही, अब इसकी तरफ अपना रुख सीधा करो, अब इसके रास्ते में खड़े हो जाओ, अब इस्तकामत रखो। देखिए यहां लफ्ज आया नहीं फस्तकीमुल इलैही, आगे भी आएगा, लेकिन यहां इला का मानी समझ लें कि जब इस्तकामत के लफ्ज के बाद इला लगे तो इसका मानी होता है किसी चीज को बरकरार रखना या बरकरार रहना, मतलब यह कि अल्लाह की इबादत के लिए सीधे रहो, हर शिर्क से पाक कर लो, इबादत को अल्लाह ही के लिए खालिस कर लो, तुम्हारी दौड़ अल्लाह की तरफ हो, तुम्हारा इरादा तुम्हारी नीयत उसकी रजा को पाने की हो, फस्तकीमु इलैही, जमे रहो हालात जैसे भी हो, वस्तगफिरू, और उससे गुनाहों की बख्शिश मांगो। और इस्तिगफार किसको कहते हैं, दो चीजें होती हैं इसमें, सत्रुल ज़म्ब, गुनाहों को छुपा लो, पीछे सूरह मोमिन के शुरू में भी बात हुई थी ना, गाफिरुल ज़म्ब भी वही वाला लफ्ज है, सत्रुल ज़म्ब और तजावज़ु अन। पहला दर्जा क्या होता है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा ले, और फिर दूसरा क्या होता है, उससे तजावुज करे, यानी गुनाहों को छुपाकर हमें माफ कर दे, हमारे बारे में कोई भी चीज ऐसी ना रखे जिसको हमने पिछली जिंदगी में कर दिया। वबैलुल लिल मुशरिकीन, बड़ी तबाही और हलाकत है मुशरिकों के लिए। या नोट कीजिएगा, वैल जहन्नुम की वादी, या अल्लाह की नाराजगी या नाफरमानियां और मुख्तलिफ तरह से जो चीजें आती हैं, लफ्ज़ है मुशरिकीन, और यहां मुशरिकीन क्यों, मक्की दौर था और मक्का में लोग ऐसी बातें करते थे और मक्का वालों के सामने ये बात चुके रखी जा रही थी। लेकिन अब जरा मुशरिकीन की तारीफ पढ़िएगा, कौन होते हैं, नंबर 1 2 3 करेंगे, अल्लज़ीन ला यूतून ज़का, वो लोग जो खुद को पाक करने की कोशिश नहीं करते। देखिए लफ्ज़ ज़कात का लफ्जी माना क्या होता है, पाकीज़गी, और यहां ज़कात असली मानों में आया, चूंकि मक्का में भी ज़कात नहीं थी तो यहां लफ्ज ज़कात के दो मानी लिए गए। पहली तो बात है कि ज़कात बमानी तज़किया, पाकीज़गी, ठीक है, नफ्स की ज़कात कह लीजिए, और अगर दूसरा माना ले भी लिया जाए ज़कात का तो फिर नफली सदकात, ये दोनों मानी मुफसरीन ने दिए। तो ज़कात माल खर्च करना अल्लाह के नाम पर, वो अपने नफ्स को पाक नहीं करते। और देखिए मुशरिक गंदे ही तो रहते हैं, उनकी सोचें गंदी, उनकी निगाहें गंदी, उनके उनकी शर्मगाहों से गलत फेल होते, तो कहा कि ये मुशरिक कौन है जो नफ्स को पाक नहीं रखते। दूसरा जुर्म, वहुम बिलाखिरति हुम काफिरून, और वो आखरत के मुनकिर हैं। असल सारी जड़ी ये है कि आखरत का इनकार, पता लग जाए ना इन मस्तियों का आगे जाके नुकसान क्या होना है तो कभी ये गलत काम ना करें। पीछे जाके हम पढ़ेंगे आखिरी सूरतों में आता, कद अफलह मन ज़क्काहा वकद खाब मन दस्साहा, बेशक फला पाई उसने जिसने इसको पाक किया, किसको, नफ्स को, और बर्बाद हो गया जिसने इसको दबा दिया। तो जरूरत इस बात की कि इंसान खुद को पाक रखे। किस चीज से नफ्स को पाक रखना है? शिर्क से पाक। शिर्क अकबर क्या है? जाहरी शिर्क, इससे पाक। और शिर्क असगर क्या है? रियाकारी से पाक। दिल को अल्लाह की याद से जोड़े और गैर की मोहब्बत से दिल को पाक करें। सूरत अल हाका में हम पढ़ेंगे, इन्नहु काना ला यूमिनु बिल्लाहि लसीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फिर इसी तरह आप देखिए, पाक रखने का एक और मानिए कि गुनाहों से पाक नहीं रखते, अपने आप को गुनाहों से दूर नहीं रखते। इसके बरक्स, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होगा। सुबहान अल्लाह, आप कह लीजिए कि इन्फिनिट किस्म की सप्लाई। गैरु ममनून पीछे भी आया और अब अगली सूरतों में आप इसको देखेंगे। आइए जरा इसके मुख्तलिफ मानी देखते हैं। लफ्ज़ देखिए, ममनून में क्या है? मन। मन कहते हैं बोझ को और मन कहते हैं एहसान को भी। पीछे आप पढ़ चुके हैं सूरत आल इमरान में, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। ठीक है, तो अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। तो फिर पहला मानी क्या होगा गैर ममनून का? कि वो अजर जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसको आप कह लें कि बगैर सिलसिला तोड़े वो सप्लाई मिलती रहेगी, कमी नहीं आएगी। दूसरा मानी क्या है? वो अजर जो एहसान जतला जतला कर नहीं दिया जाएगा। जैसे कोई बखील किसी को दे भी देना दिल बड़ा करके, तो बार बार उसको जताता है, तो कहा कि इनको जो मिलेगा वो एहसान नहीं जताए जाएंगे, बल्कि इनको मोहब्बत से, इज्जत से दिया जाएगा, ताकि इनके दिलों पर इसका कोई बोझ ना हो। अल्लाह अकबर। अब जरा यहां रुक के थोड़ा सा मुहासबा कर ले। हमारे अमल जैसे होंगे ना, अजर भी ऐसा होगा। खुद से पूछिए, क्या कुरान का यह सफर जो मैंने तालीम के लिए लिया, इसको सफरे गैरा ममनून समझती हूँ या तोड़ तोड़ के करती हूँ? ब्रेक्स ले ले के, छुट्टियां कर कर के, देर से आके जल्दी जाके, जल्दी आके देर से करके। आप कहेंगे हमारी मजबूरियां भी तो इतनी है ना, तो क्या यही तो सीखा नहीं कि मजबूरियों ही को तो मैनेज करना है? तो जरूरत इस बात की कि अपने आमाल को कैसा कर ले गैरो ममनून, ना रुकने वाले, अनएंडिंग सप्लाई, खत्म ही ना हो। आप देखिए ना, कभी आप स्टोर्स में जाके शॉपिंग करके देखें, एक चीज खत्म होती है वो ला के और रखी जाते हैं, फिर खत्म होती है और ले आते हैं। कभी खत्म हो रही हो तो आप कहते हैं अच्छा आज स्टोर खाली खाली लग रहा है, बची खुची चीजें हैं। क्या मेरे अमल बचे खुचे हैं? क्या मैं हर हालात में नेकी करती हूँ? देखिए, अब ना तो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना आप मुझसे पूछते हैं, हम सब अपने आप से पूछें। अब वो दौर शुरू हो गया हमारी जिंदगी का कि हम अपना मुहासबा खुद करें। जो मजबूरी थी क्या उसका कोई हल था? पैसे दे के भी तो हल हो ही सकती थी ना, किसी की मदद लेके भी वो मजबूरी हल हो सकती है ना, वरना तो हम सब मजबूर हैं। कौन मजबूर नहीं आज दुनिया में? वही बंदा दाई दीन बनेगा और वही इस जिहाद में शरीक रहेगा आखिर तक जो कोशिशें गैर ममनून करेगा। और ममनून यहां जो है वो गैर मकतू के मानी में भी है कि अमल सवाले और ईमान को कता नहीं करते, हमेशा वो काम करते हैं। यहां से पता चलता है कि मोमिन जिन आमाले साले का आदी होता है ना, बीमारी में, सफर में, किसी उजर में, उस अमल को नहीं छोड़ता। हत्ता कि अगर तहज्जुद नफिल भी पड़ता है ना, तो वो भी सफर में छूट जाएगी तो कहेगा हाय कुछ हो गया, उसको भी सुबह उठ के मेकअप करने की कोशिश करेगा। रोजे रखने की आदत है तो उसको भी मेकअप करेगा कि हाँ नहीं, इसको नहीं छोड़ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, मेरा बंदा जो अमल अपनी तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात में पाबंदी से करता था, इसके उजर की हालत में भी वो अमाल बगैर किए हुए इसके नामे अमाल में लिख दो। बुखारी की भी रिवायत है अबू मूसा अल-अशअरी से, और भी इसके बहुत सारे रेफरेंस हैं। तो मैं और आप यहाँ खुद चेक कर लें, हम किस दर्जे पे जाना चाहते हैं। जो वहां चाहते हैं वो यहाँ कर ले, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपनी मदद हमारे शामले हाल करेगा। सारी मजबूरियां, सारे मसले अल्लाह ही के हल करने से होते हैं। और याद रखिए, बंदा हमेशा हर वक्त एक ही हाल में तो रहता भी तो नहीं है ना, कभी सेहत कभी बीमारी। आप सेहत में बगैर किसी रुकावट के काम करते जाएं, कभी बीमारी में घर में बैठे होंगे ना, तो फरिश्ते मस्जिद में जाके आपको ढूंढेंगे। हदीस में आता है कि बाद दफा कुछ फरिश्ते मस्जिदों में आके किसी बंदे को ढूंढते हैं, तो पूछते हैं किधर है, तो वो कहते हैं वो तो आज नहीं आया, कहा नहीं, अल्लाह ने तो कहा कि वो मस्जिद में बैठा हुआ है। कहा नहीं, वो तो आज बीमार है। कहा अच्छा, इसीलिए रोज आता था ना, तो आज उसके घर पे नमाज पढ़ने को भी अल्लाह ने मस्जिद में आके पढ़ने की बात की है। अल्लाह में इसकी तौफीक अता फरमाए। कोई एक काम नहीं करे, खुद सुस्ती ना रखें, किसी मजबूरी में अगर छूट गया अल्लाह ताला फायदा देंगे। आप देखिए कि दुनिया में एम्प्लॉय जो मुस्तकिल आते हैं उनको एंड पे क्या मिलता है, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, पेंशन मिलती है ना, या उससे भी अच्छी जॉब मिल जाती है। अल्लाह भी यही करता है। आज आप करते रहें बस, अल्लाह भी देख, बेनियाज हो जाए हर चीज से, हर खौफ फिक्र को दिमाग से निकाल दें और इंजॉय करें शायद को। इन्ना लजीना मनु वामिलु सालेहाती लहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह हमारे लिए भी ऐसे ही मामला करवा दे। सूरत स्वाद आयत 54 में भी हम पढ़ चुके कि ये है हमारा वो रिस्क जिसको कभी खत्म नहीं होना। तो अल्लाह ताला बंदे को उसकी आदत के मुताबिक अजर देते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स सच बोलता है और फिर सच्चा लिखा जाता है अल्लाह के यहाँ, एक से झूठ बोलता है और वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। तो जो काम मुस्तकिल किया जाए वो इंसान का टाइटल बन जाता है। अल्लाह में इसकी तौफीक दे।